ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तु यार दिव्यध्वनियु लोकहितवमाडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की
जय बोलो परम पूज्यक्षा गुरुवर श्री नियम सागर जी मुनि महाराज की नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु
सम्यक ज्ञान संस्कार का दूसरा पाठ लेते हैं आवाज दूसरा पाठ है परमिष्टि परमिष्टि किसे कहते हैं जो इस संसार में परम अर्थात श्रेष्ठ स्थान माने गए हैं उन स्थानों को संसारी जीव इष्ट समझते हैं वे स्थान दो प्रकार के होते हैं एक रत्नत्रय स्थान और एक मोक्ष का स्थान ये दोनों प्रकार के स्थान आत्मा को छोड़कर बाहर नहीं होते रत्नत्रय भी आत्मा से प्रकट होता है आत्मा में प्रकट होता है मोक्ष भी आत्मा में प्रकट होता है आत्मा से प्रकट होता है इन दोनों स्थानों को हम इष्ट समझते हैं ये दोनों स्थान प्रत्येक संसारी जीव को अपेक्षित होते हैं इनकी इच्छा रखते हैं यदि इन दोनों स्थानों की इच्छा रखते हैं तो ये ही हमारे लिए इष्ट हो गए। इनको परम स्थान कहा गया है। ये दोनों स्थान परम स्थान हैं, अर्थात संसार में सबसे श्रेष्ठ स्थान माने गए हैं। इनको धारण करने का मतलब होता है दिगंबर मुनि अवस्था को धारण करना। दिगंबर मुनि अवस्था अगर अपने जीवन में आ गई तो रत्नत्रय आ गया, रत्नत्रय स्वरूप धर्म आ गया। इस धर्म के माध्यम से जीव को सुख एवं शांति मिलना प्रारंभ हो जाता है। सुख शांति के लिए ही रत्नत्रय की आवश्यकता होती है। सुख और शांति के लिए प्रत्येक जीव अपेक्षा करता है, वह प्रारंभ हो जाती है। रत्नत्रय यदि है तो शांति है, सुख है, आत्मा को अपूर्व अलौकिक आनंद है। इसी रत्नत्रय के द्वारा मोक्ष को साधा जाता है, मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि इन दोनों स्थानों को परम स्थान कहा है और इनकी प्राप्ति भव्य जीवात्माओं को जब तक प्राप्त नहीं होती, इनकी प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक जीव अक्षय अनंत सुख का अनुभव नहीं कर सकता। इन दोनों स्थानों को प्राप्त करने वाले भव्यात्माओं को परमेष्टि कहा जाता है। जो परम स्थान पर होते हैं उन्हीं को परमेष्टि कहना चाहिए। ऐसे परमेष्टि पांच होते हैं, अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। इन पांच परमेष्टियों को देख करके हम यह बता सकते हैं, सिद्ध परमेष्टि को छोड़ करके शेष चार परमेष्टियों को प्रथम स्थान प्राप्त रहता है। वो कौन सा स्थान? रत्नत्रय का स्थान। और एक परमेष्टि ऐसे हैं जिनको मोक्ष स्थान प्राप्त रहता है, वो कौन से परमेष्टि? सिद्ध परमेष्टि। अरिहंत परमेष्टि मोक्ष मार्ग में स्थित हैं, मोक्ष मार्ग के साधक हैं, इसलिए वो भी रत्नत्रय के धारी हैं। इसी रत्नत्रय के द्वारा, रत्नत्रय स्वरूप धर्म के द्वारा, रत्नत्रय स्वरूप इस मार्ग पर चलते चलते कर्मों को नाश करके मोक्ष की प्राप्ति करने वाले होते हैं। अरिहंत परमेष्टि मार्गस्थ हैं, आचार्य परमेष्टि भी मार्गस्थ हैं, उपाध्याय परमेष्टि भी मार्गस्थ कहलाते हैं और साधु परमेष्टि भी मार्ग पर चलने वाले ही कहलाते हैं। चार परमेष्टि मार्ग पर होते हैं और एक परमेष्टि मंजिल पर होते हैं। मंजिल पर जाने के उपरांत रत्नत्रय का पालन करना आवश्यक नहीं है। रत्नत्रय का फल मोक्ष होता है। मोक्ष की प्राप्ति हो जाने के बाद कुछ करने धरने का विषय नहीं रहता। अनादि अनंत काल तक तो जीवात्मा के पीछे संसार था। संसार पर्याय का विनाश करके जब मोक्ष पर्याय को प्राप्त करते हैं तो वह कभी जीवात्मा को छोड़कर दूर होता नहीं। अनंत अनंत काल तक आत्मा के साथ रहता है। ऐसा यह मोक्ष स्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। यह मोक्ष केवल भव्य जीवात्माओं को ही प्राप्त होता है। संसार में दो प्रकार के जीव हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्त कभी किए नहीं, न कर सकते हैं, न करेंगे। उन जीवों का नामकरण किया गया है अभव्य जीव। और ऐसे जीव भी हैं जो अनादिकाल से संसार में हैं और संसार में रहेंगे और कभी न कभी मोक्ष जाएंगे, और कुछ उसमें से नहीं भी जाएंगे, कुछ उसमें से अनादिकाल तक जाते रहेंगे। ऐसे जीवों को नामकरण किया गया है भव्य जीव। तो दो प्रकार के ये जीव हो गए, भव्य जीव और अभव्य जीव। अभव्य जीव को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और भव्य जीव कभी न कभी मोक्ष जाएंगे, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। कभी न कभी जाएंगे, आज तक नहीं गए हैं कोई बात नहीं, वर्तमान में पुरुषार्थ करे तो जा सकते हैं, नहीं कर पाए तो भविष्य काल में कभी न कभी वे अवश्य जाएंगे। चतुर्गति से छूटकर, जन्म मरण के चक्र से बचकर, अनंत काल के लिए मोक्ष में रहेंगे, मुक्त अवस्था में रहेंगे, शुद्ध अवस्था में रहेंगे, शरीर रहित रहेंगे, कर्म मुक्त रहेंगे, अज्ञान रागादि भाव कषाय भावों से रहित रहेंगे, मिथ्यात्व आदि परिणामों से सदा मुक्त रहेंगे। ऐसे जीवों को सिद्ध भगवान या मुक्तात्मा कहते हैं। हम सभी चतुर्गति में से एक गति में हैं, जिसका नाम मनुष्य गति। यहाँ से मरण करने के उपरांत हमें कहीं न कहीं जाना है। हम इस गति के चक्र से तो बच नहीं सकते। क्या बच करके मोक्ष जा सकते हैं? नहीं। मनुष्य पर्याय मिली है, इसी मनुष्य पर्याय से मोक्ष अवश्य होता है, परंतु पंचम काल होने से इस मनुष्य शरीर से तो मोक्ष नहीं हो सकता। परंतु मोक्ष मार्ग पर चलकर हम अपना कल्याण इस भव में भी कर सकते हैं। मार्ग पर चलने वाला यदि थोड़ा बहुत भी थोड़े समय के लिए एकाध भव में भी मार्ग पर चलता है तो आत्मा के ऊपर रत्नत्रय स्वरूप धर्म का संस्कार आता है। यह धर्म का संस्कार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी एक भव में भी यदि आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की उपासना करता है, पालन करता है, धारण करता है, तो वह निश्चित रूप से उसका पालन करते करते यदि मरण करेगा तो इसको समाधि मरण कहते हैं। पहला तो समाधि मरण होता है किसी भव में, और कालांतर में उसी समाधि मरण के फल स्वरूप उसके भवों में मर्यादा बन जाती है। संसार के जो भावी भव रहते हैं उसमें एक रेखा खिंच जाती है, कब तक यह संसार में रहेगा, कब मोक्ष प्राप्त करेगा, इसका समय निश्चित होता है। तो कितने भवों का समय निश्चित होता है इसको भी जिनेंद्र भगवान ने बताया है। कितने भव, एक बार कोई भव्यात्मा मनुष्य पर्याय पाकर रत्नत्रय को धारण कर मुनि बनकर या प्रतिमाधारी श्रावक बनकर, वो भी पुरुषार्थ है ना, प्रतिमा धारण करना भी बड़ा दुर्लभ है, पुरुषार्थ है, इसके माध्यम से भी बहुत बड़ा काम होता है। आज पंचम काल में मोक्ष अवश्य नहीं है, मोक्ष होता नहीं ये सही है, परंतु क्या समाधि मरण भी नहीं होता, ऐसा है क्या? समाधि मरण तो हो सकता है, किस किस को हो सकता है? रत्नत्रयधारी मुनियों को समाधि मरण हो सकता है और प्रतिमाधारी श्रावकों को समाधि मरण हो सकता है और अविरत सम्यक दृष्टि को समाधि मरण तो नहीं बाल मरण हो सकता है। बाल मरण का नाम समाधि मरण नहीं, क्योंकि वह व्रत रहित सम्यक दृष्टि है। सम्यक तो मात्र का ही केवल पालन करता है, इसलिए उनको समाधि तो नहीं कहा। इनको भवों की सीमा जरूर खिंच गई है, लेकिन अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला जीव यह नहीं माना जाता। इसके लिए अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार कहा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। हाँ, यदि वह क्षायिक सम्यक्तु को प्राप्त कर लेता है, ये भी एक सम्यक दर्शन है। क्षायिक सम्यक दर्शन दो तीन प्रकार के होते हैं, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, क्षायोपशम सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। क्षायिक सम्यक दर्शन को छोड़कर शेष जो दो सम्यक दर्शन हैं इनका काल जरा लंबा है, पर क्षायिक सम्यक दर्शन यदि प्राप्त होता है तो जीव का संसार काल बहुत सीमित हो जाता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा चार भवों में, एक ये मनुष्य भव, आगामी कोई एक और मनुष्य भव हो सकता है यदि भोग भूमि में जाता है तो, ये एक मनुष्य भव, भोग भूमि का एक मनुष्य भव और वहाँ से नियम से वह देवगति में जाता है तो वो तीसरा भव, और वहाँ से आकर नियम से मनुष्य ही बनता है, ये चौथा भव हो गया। इस चौथे भव से वह नियम से निर्वाण को प्राप्त होता है, चतुर्गति से मुक्त हो जाता है, अनंत काल के लिए संसार चक्र को छुट्टी दे देता है। किस सम्यक दर्शन से? क्षायिक सम्यक दर्शन से। परंतु ये ध्यान रखना, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव क्षायिक सम्यक दर्शन को ले करके चौथे गुणस्थान में ही रह करके कितने भवों तक रह सकता है? कहते ज़्यादा से ज़्यादा तीन भव तक क्षायिक सम्यक दर्शन को लेकर वह चौथे गुणस्थान में रह सकता है, चौथे भव में जाने के उपरांत वह नियम से दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर कर्मों का नाश कर मोक्ष अवश्य प्राप्त करता है। किस भव में? चौथे भव में। नियम से दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करेगा ही। अंतरंग बहिरंग परिग्रह को त्याग कर मुनि बनकर मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिग्रह का त्याग अनिवार्य माना गया है। कोई भी जीवात्मा कर्मों को जीते बिना, कर्मों को नष्ट किए बिना और परिग्रह को त्यागे बिना निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता। निर्वाण यानी मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष प्राप्ति का प्रथम पुरुषार्थ है बहिरंग परिग्रह त्याग करना और अंतरंग परिग्रह त्याग करना। अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व को और कषाय को कहा है और बहिरंग परिग्रह किसको कहा है? चेतन अचेतन वस्तुओं को कहा है। ये दोनों मिल करके दस हो जाते हैं। परिग्रह दस प्रकार के, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कोप्य यानी वस्त्र और भांड यानी परिग्रह। इसमें चेतन वस्तु कितने और अचेतन वस्तु कितने, इसको देख लो तो पता लग जाएगा। क्षेत्र चेतन है क्या अचेतन? अचेतन वस्तु। वास्तु यानी घर चेतन है क्या अचेतन? अचेतन। हिरण यानी चांदी, चांदी अचेतन। सुवर्ण यानी सोना अचेतन। धन, धन में दो प्रकार के धन, अचेतन धन और चेतन धन। धन यानी पैसा भी होता है, रुपया पैसा, ये धन हो गया। ये चेतन है क्या अचेतन? नोट वगैरह, सिक्के वगैरह अचेतन। और धन का अर्थ होता है एक पशु धन, गाय भैंस इत्यादि को हम पालते हैं यदि, तो वह भी परिग्रह है। वो चेतन धन है क्या अचेतन? वो चेतन धन हो गया। धन परिग्रह में दो प्रकार की, चेतन भी है और अचेतन भी। दासी और दास ये दो परिग्रह और हैं, ये अचेतन धन है। कुप्य यानी वस्त्र, वस्त्र अचेतन वस्तु, अचेतन परिग्रह है। और बर्तन अचेतन वस्तु है। दस को यदि दो भागों में विभाजित किया जाए तो एक वर्ग, एक ग्रुप है चेतन परिग्रह और एक ग्रुप है अचेतन परिग्रह। परिग्रह कितने प्रकार के परिग्रह को त्याग करने से हमारा कल्याण होता है? तो दोनों प्रकार के, चेतन परिग्रह को और अचेतन परिग्रह को त्यागने से कल्याण होता है। इनको क्यों त्यागना पड़ता है? इनको रखते हुए मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? रत्नत्रय का लाभ क्यों नहीं होता है? ये क्या बाधा पहुंचाते हैं हमारे लिए? क्यों त्यागना इनको, क्यों त्यागना चाहिए? ये परिग्रह है ना, चेतन अचेतन, इनको छोड़ना क्यों पड़ता है? ऐसा रखते हुए ही सम्यक दर्शन, संयम, मोक्ष आदि की प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्या कारण है? क्या उत्तर है इसका? हाँ, परिग्रह के कारण से चिंता होती है, होती है कि अनुभूति होती, आप सभी अनुभूत हैं इस बात से, आपको अनुभव में भी आया है, चिंता होती है कि नहीं परिग्रह से? विकल्प होते हैं कि नहीं? विकल्प होते हैं, चिंता होती है, और इन विकल्पों में, चिंता में रहते हुए आत्मा को पाप या पुण्य का बंध, पुण्य का तो होता नहीं, परिग्रह को लेकर चिंता होती है तो कौन सा कर्म का बंध होगा? पाप कर्म का बंध होगा। वो कर्म भी पुद्गल है, बाहरी वस्तु है, पुद्गल के परमाणु हैं, वे आत्मा की ओर आकर्षित होते हैं और आत्मा को बंद अवस्था में, बंद अवस्था को प्राप्त होते हैं। एक बार वो आत्मा में आ गए तो बहुत समय तक अंदर रहते हैं, जब तक फल दे करके वो झड़ते नहीं, जाते नहीं, तब तक आत्मा में ही रहते हैं कर्म। इन कर्मों को यदि हम बांधते हैं तो कर्म भी हमारे लिए परिग्रह, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये सभी पुद्गल परमाणु स्वरूप कर्म हैं, अलग अलग नाम वाले, अलग अलग स्वभाव इनका होता है। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान स्वभाव को नाश करता है, दर्शनावरणी कर्म आत्मा के दर्शन गुण यानी देखने की शक्ति को घात करता है, वेदनी कर्म सुख और दुख का वेदन कराता है, आयु कर्म हमको संसार के बंधन में रखता है, नाम कर्म हमारे लिए शरीर दिलाता है, कोई ना कोई एक शरीर मिलेगा किसी भी गति में जाने के बाद। यदि नरक गति में गए तो कौन सा शरीर मिलेगा? औदारिक शरीर या वैकृत शरीर? वैकृत शरीर मिलेगा। यदि तिर्यंश गति में गए तो औदारिक शरीर मिलेगा, मनुष्य बन गए तो औदारिक शरीर मिलेगा, देवगति में गए तो वैकृत शरीर मिलेगा। देवों के शरीर को शुभ वैकृत शरीर माना है, शुभ शरीर, और नारकी जीवों के वैकृत शरीर को अशुभ माना है, बहुत गंदा रहता है नारकी जीवों का शरीर, बहुत मलिन रहता है, बहुत बदबू आती है। कोई नारकी जीव यदि यहाँ पृथ्वी पर आ जाए, आ तो नहीं सकता है, लेकिन यदि आ जाए, कल्पना करे, भगवान कहते हैं कि आसपास के कोसों दूर तक के जीव जो मनुष्य हैं और तिर्यंच हैं, वे मरण को प्राप्त हो जाएंगे। किस कारण? उस शरीर के बदबू को सूंघ कर, इतना भयंकर बदबू है जिसको हम लोग सहन नहीं कर सकते। मनुष्य और तिर्यंच कोसों दूर तक के आसपास के मरण को प्राप्त हो जाएंगे, इतना डेंजर है वो शरीर। जिस प्रकार एक परमाणु बम को डाल दिया जाए तो आसपास के सारे लोग मरण को प्राप्त होते हैं, वैसे जहरीला शरीर है वो, ऐसा नारकी जीवों का शरीर अशुभ कर्म के उदय से अशुभ प्राप्त होता है। ऐसा नारकी जीव का शरीर मिलने के लिए जीव क्या पाप करता है, कौन सा पाप करता है, कौन सा पाप करने से जीव को अशुभ वैकृत शरीर की प्राप्ति होती है? परिग्रह में मूर्छा भाव धारण करके, उसमें आसक्त होकर के, उसका संपादन करने से, उसका संग्रहण करने से, संग्रह करते करते संक्लेश परिणाम हो जाते हैं, और आखिर आखिरी तक वह उसको भोग तो नहीं पाता लेकिन संग्रह करके रख करके चला जाता है। कहाँ चला जाता है? नरक जाता है। जीव अज्ञानी है जिसको वह भोग नहीं सकता, उपयोग में ले नहीं सकता, उसका संग्रह करता चला जाता है। ज्यादा हो जाए तो टैक्स न देना पड़े इसलिए उसको विदेश के बैंकों में रख करके आता है। टैक्स देना न पड़े तो इतना रखता है, इतना संग्रह करता है, इतना संग्रह करता है। इस जीव को संक्लेश परिणाम संग्रह करते समय भी होता है, चोरी करना पड़ता है, किसी के धन को हड़पना पड़ता है, ऐसा पाप करके संग्रह करके अंत समय में क्या रिजल्ट मिलता है उसको? बस नरकायु का बंद करके नरक गति में जाता है। तो अशुभ नाम कर्म का बंद किया हुआ रहता है पूर्व में, इसलिए अशुभ शरीर की प्राप्ति करता है और उसका फल भोगता रहता है। जो परिग्रह को कम करता है जीवन में वह देव गति में जाता है, और जो परिग्रह को बढ़ाता चला जाता है वह नरक गति को प्राप्त करता है। और परिग्रह में जो संतुष्ट भाव रखता है, संतोष परिणाम के धारी, परिग्रह में संतुष्ट हो तो वह मनुष्य गति को प्राप्त करता है। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुष्यस्य तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा है, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के धारी मनुष्य वह स्वभाव से संतोषी होता है। संतोषी स्वभाव होने के कारण वह मनुष्य गति में पुनः जन्म लेता है। आखिर मनुष्य गति में जन्म लेना ये भी तो संसार है ना। तो अल्प परिग्रह, अल्प आरंभ हिंसा आदि करने से भले ही मनुष्य गति की प्राप्ति होती है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, क्या करने से होगी? हाँ, परिग्रह को त्यागने से होगी, रखने से नहीं। और अपन को क्या करना चाहिए, यही भावना भाना चाहिए, हे भगवान हमारा परिग्रह हमारे जीवन के काल के अंत तक कम होता जाए, ये बढ़े न, ये भावना भानी चाहिए। मैं इसका त्याग करता जाऊं, प्रमाण करता जाऊं और अंत में अपने आत्म स्वभाव में रमन करते हुए समाधि मरण कर सकूं, परिग्रह से अलिप्त हो जाऊं, परिग्रह से मुक्त हो जाऊं, ये भावना भाते भाते जाता है। इस जीव को निर्वाण की प्राप्ति होती है रत्नत्रय धारण करने से, परिग्रह को त्याग किए बिना संयम नहीं आता। सम्यक दर्शन, यथार्थ देव शास्त्र गुरु, यथार्थ तत्व आदि के श्रद्धान से सम्यक दर्शन की उपलब्धि तो आसान हो जाती है, पर संयम की उपलब्धि आसान बात नहीं है। परिग्रह से हमें निर्मोही होना पड़ता है। परिग्रह से जैसे जैसे निर्मोही हो जाएंगे वैसे वैसे जीवन में संयम आता जाता है, चारित्र आता जाता है, इसी चारित्र के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाला जीव ही कर्मों को नाश कर सकता है, ध्यान की प्राप्ति कर सकता है। परिग्रह छोड़े बिना देखो ध्यान भी नहीं होता। इधर ध्यान है कि नहीं, क्या बता रहा हूं? परिग्रह को त्यागे बिना ध्यान भी नहीं होता, क्या हो सकता है? परिग्रह रखने वाले लोग ही हमको सबसे ज्यादा प्रश्न करते हैं, महाराज आपको तो बहुत जल्दी ध्यान होता है, आपने बहुत बड़ी साधना की है, अभ्यास किया है, और हमारा मन रुकता नहीं, चंचल रहता है, कैसे ध्यान की प्राप्ति करे, ऐसा प्रश्न करते हैं। कैसा ध्यान करे, इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देना चाहिए? और श्रावक पूछ रहा हो, एक परिग्रहधारी व्यक्ति पूछ रहा हो, जिनका मन चंचल है तो किस कारण से है, उनको ये सब पता नहीं है, पर मन चंचल है ये जरूर पता है, किस कारण से मन चंचल है ये बिल्कुल पता नहीं है। पर मन चंचल है, रुकता नहीं है, ये अनुभव की बात है, मंदिर में एक भी माला नहीं फेर सकता, बैठ गया तो मन इधर उधर भागता रहता है, हाथ में माला है और मुंह से पंच परमिष्टियों का उच्चारण हो रहा है मन में, लेकिन मन दूसरी जगह है। ऐसा क्यों होता है? दूसरी जगह है तो कहाँ है ये सोचो तो पता चल जाएगा। मन हाथ में माला लेती है और ध्यान करते समय वो उचक गया, दूसरी जगह चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ गया, परिग्रह में गया है कि नहीं? तो मन को परिग्रह से बहुत आसक्ति है, मन को परिग्रह से आसक्ति है, और जिसमें आसक्ति है वहीं तो जाएगा, अन्यत्र कहाँ जाएगा? वो जिसमें आसक्ति रहती है वहीं पर तो दौड़ेगा, दूसरी जगह क्यों दौड़ेगा? जिसका संस्कार पड़ा हुआ है वहीं तो जाएगा, दूसरी जगह क्यों जाएगा? जैसा संस्कार पड़ जाता है मन के ऊपर वैसा ही वह कार्य करने लगता है। तो इस प्रश्न का उत्तर स्वयं खोज सकते हैं, मन चंचल क्यों है, कहाँ गया, परिग्रह में गया, तो क्यों गया ये विचार करो। आसक्ति है, परिग्रह के प्रति आसक्ति है, यदि परिग्रह को त्याग किया जाए तो आसक्ति कम होगी क्या नहीं होगी? जितना परिग्रह को त्यागोगे उतना आसक्ति भी कम हो जाएगी, और जितनी आसक्ति कम हो जाएगी उतने प्रमाण में आपका मन भी रुक जाएगा। ये कैसा है देखो, एक उदाहरण दे दिया जाए इसके लिए समझने को। किसी अष्टमी के दिन या चतुर्दशी के दिन आपने चतुर्विध आहार का त्याग किया, यानी उपवास का नियम लिया। कैसा लिया? मंदिर में आकर भगवान का दर्शन करके भगवान के सामने संकल्प ले लिया कि हे भगवान, मैं आज उपवास करना चाहता हूं। संकल्प ले लिया, तो ये आहार का त्याग आप क्यों कर रहे हैं? इससे क्या होने वाला है? उपवास क्या चीज है? उपवास एक तप है। उपवास अपनी इच्छाओं को रोकने का एक माध्यम है, तप है। इस तप से कर्मों की निर्जरा होती है, और कर्मों की निर्जरा के दृष्टिकोण से और तप करने के लिए एक दिन आपने उपवास किया, अष्टमी हो या चतुर्दशी हो, उस दिन उपवास किया। तो उपवास करने से आपने क्या किया? पर वस्तु के प्रति, यानी आहार पर वस्तु है, पर वस्तु के प्रति होने वाली मूर्छा भाव को, आसक्ति को, इच्छा को रोका। तो इच्छा को आप क्यों रोक रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं? इच्छा निरोध तप, तप करने के लिए रोक रहे हैं। तप किसका साधन है? तप से क्या उपलब्ध होगा? कर्मों की निर्जरा होगी। कर्मों की निर्जरा से क्या मिलेगा? आत्मा में स्थिरता आएगी, यानी तप करते समय आत्मा को ध्यान की उपलब्धि होगी। कर्म निर्जरा तो होगी ही होगी, परंतु ध्यान की उपलब्धि भी होगी। तप ध्यान का ही माध्यम है, और ध्यान भी एक स्वयं तप है, अंतरंग तप है वो। उपवास यदि बहिरंग तप है तो ध्यान अंतरंग तप है। इन दोनों तपों के माध्यम से आत्मा को तपाना होता है। आत्मा को तपाने से कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों का क्षय होता है। कर्मों का क्षय होने से आत्मा हल्का हो जाता है। हम ये नहीं बता रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है। कर्म कितने हैं? बहुत हैं। और हम आज के पंचम काल में उपवास करें, ध्यान करें, तप करें और बैठ करके कुछ साधना करें तो क्या निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी? क्या उपवास के माध्यम से संपूर्ण कर्मों की निर्जरा हो जाएगी? नहीं होने वाली है। तो कुछ तो होगी ना, संपूर्ण नहीं सही, कुछ कर्मों की निर्जरा होगी कि नहीं होगी? होगी। तो कुछ कर्मों की निर्जरा होगी, तो कुछ कर्मों के निर्जरा होने से आत्मा कुछ प्रमाण में हल्का होगा क्या नहीं होगा? कुछ प्रमाण में हल्का होगा, इसलिए उपवास हम करते हैं। कुछ प्रमाण में हल्का होने के लिए उपवास करते हैं। और जित उपवास ये को हम इसको उदाहरण बना करके समझा रहे थे, जैसे चतुर्विध आहार का त्याग किया उपवास लेकर के। अब आहार परिग्रह है क्या? नहीं। उसी परिग्रह से इच्छा सतत होती रहती है इस जीव को, इसलिए उस आहार की इच्छा को त्याग दिया। उस दिन आप विचार करें, अनुभव लें, प्रैक्टिकल करें कि हमने चतुर्विध आहार को त्याग किया है तो मन बार बार उस दिन आहार के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। देखो ये समझ में आ गया ना, मन कैसा रुकता है? त्याग करने से रुका, क्या त्याग नहीं करने पर भी रुकेगा? वो चतुर्दशी का दिन था या अष्टमी का दिन था, उस दिन उपवास किया, उपवास का संकल्प करते ही मन रुक गया। आप मंदिर में बैठ करके खूब जाप करो, कभी भोजन करने की इच्छा आपको 24 घंटे तक नहीं होगी। तो परिग्रह में मन गया नहीं, और मन नहीं गया तो आत्मा पवित्र है। तो ऐसे आहार एक ही परिग्रह नहीं, परिग्रह 10 प्रकार के हैं। 10 प्रकार के परिग्रह को त्यागे बिना क्या मन को रोका जा सकेगा? इसलिए कहा कि श्रावक अवस्था में ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। पूरब का सूर्य पश्चिम में उग सकता है, आकाश में कुछ भी नहीं होता, आकाश से फूल झड़ सकते हैं। और उदाहरण दिया है आचार्यों ने, जो गदा होता है उसके सींग नहीं होते, तो कदाचित किसी काल में गदे के सींग भी उग करके आ सकते हैं, परंतु गृहस्थ अवस्था में ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। 3 बार कहा है। क्यों नहीं हो सकती ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ अवस्था का नाम है परिग्रह अवस्था। परिग्रह का नाम ही है गृहस्थ अवस्था, और यह परिग्रह मुक्त अवस्था मुनि अवस्था है। वस्त्रादि परिग्रह से लेकर के 10 प्रकार के परिग्रह को परिग्रह ही तो कहा है, क्या वस्त्र परिग्रह नहीं है? वस्त्र को क्या अपन उपकरण कह सकते हैं? जैसे पिंछी, कमंडलू, शास्त्र आदि ये उपकरण हैं, क्योंकि संयम के पालन में या संयम की रक्षा के लिए ये काम में आते हैं। पिंची से जीव रक्षा की जाती है, जीवों को बचाया जाता है, तो ये संयम का रक्षक है। वस्त्र को यदि उपकरण कहेंगे तो किस संयम का वह रक्षक है, प्रश्न उठेगा। सोचो, वस्त्र से किसी संयम की रक्षा होती है क्या? शास्त्र, इससे ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, तो शास्त्र को उपकरण कहा, इसको ले सकते हैं। पिंछी, कमंडलू और शास्त्र। शास्त्र किस लिए चाहिए? ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ज्ञान मोक्ष मार्ग है। पिंछी किस लिए चाहिए? जीव रक्षा के लिए, यानी प्राणी संयम, संयम चारित्र है। जीवों की रक्षा करना संयम है, चारित्र है। उस चारित्र की रक्षा के लिए पिंछी चाहिए। और एक वस्तु है उपकरण के रूप में, कौन सी? कमंडलू। कमंडलू किस लिए चाहिए? शुद्धि के लिए, यानी आहार आदि लेते समय या शुद्धि के लिए चले गए तो शुद्धि करने के लिए कमंडलू चाहिए। वस्त्र किस लिए चाहिए? पहनने के लिए चाहिए। तो वस्त्र को पहनने से सम्यक, हाँ, रत्नत्रय में काम नहीं है, इसलिए दिगंबर दीक्षा ली जाती है। चुल्लक ऐलक दीक्षा में भी वस्त्र होता है क्या? नहीं होता है। और ऐलक जी भी वस्त्र क्यों छोड़ रहे हैं? मुनि बन रहे हैं। अगर लंगोटी उपकरण है तो रखो ना, उस उपकरण के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करो। लंगोटी से कोई संयम की रक्षा हो रही है क्या? नहीं। संयम की रक्षा वस्त्र से नहीं, वस्त्र के त्याग से ही संयम की रक्षा होती है। वस्त्र का त्याग ही चारित्र है, और वह चारित्र हमारा अंतरंग उपकरण है। इस चारित्र की रक्षा से कर्मों का विनाश होता है, कर्मों का संवर होता है, और उसी के माध्यम से मोक्ष की सिद्धि होती है। इसलिए तो वो उदाहरण आपको ध्यान में आया, उपवास का? हाँ, उपवास लेकर के बैठोगे तो आहार संबंधी मन में कोई भी विकल्प नहीं आएगा, आप निर्विकल्प हो गए। जिस तरह से आहार से निर्विकल्प हो गए, उसी प्रकार से जितने बाह्य परिग्रह हैं उनसे निर्विकल्प होना ही पड़ेगा, एक एक से होना पड़ेगा। और जिससे आप निर्विकल्प हो गए उसमें, यानी उस वस्तु में आपका मन जाएगा ही नहीं। क्या जाएगा? यदि गया भी तो ध्यान ही माना जाएगा, ऐसा मत समझो कि वो ध्यान नहीं है। आपने उपवास का नियम ले लिया और आहार सामग्री दिखने लगी तो खाने की इच्छा होगी क्या? तो आहार सामग्री दिखने लगी, दिखने से कोई नुकसान हुआ क्या? नुकसान भी नहीं हुआ। दिखेगा तो सही, कहाँ जाएगा वो? मन में आया तो दिखेगा, दिखना बाधक नहीं है। दिखने से ध्यान का भंग नहीं होता, दिखने से दुर्ध्यान नहीं कहलाता। वस्तु वस्तु है, उस वस्तु को वस्तु के रूप में आत्मा देखे तो ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं, दुर्ध्यान नहीं, ये तो धर्म ध्यान ही है। धर्म ध्यान में नहीं है क्या? है, इसको धर्म ध्यान ही कहेंगे। नहीं नहीं महाराज, ऐसे कैसे? आत्मा, आत्मा का मन आत्मा में रहे, आत्मा को देखे, आत्मा का चिंतन करे, आत्मा को छोड़कर बाहर न जाए, वो जेल की तरह भीतर रहे, जेल में बिठाई व्यक्ति की तरह, तो ही ध्यान है, नहीं तो नहीं। अगर आत्मा आहार को देख भी लेता है तो ध्यान का भंग हो जाएगा, चंचल हो जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा यदि कहोगे तो देखो, केवली भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उनके आत्मा में क्या क्या नहीं झलक रहा है, सभी झलक रहा है क्या? नहीं, सभी देख, तीन लोक के प्रत्येक वस्तु को देख रहे हैं वो, तो क्या वह उनका आत्मा या मन, उनका ध्यान चंचल कहलाएगा, दुर्ध्यान कहलाएगा? नहीं, निर्विकार ध्यान में तीन लोक के सारे वस्तु झलकने पर भी वे ध्यानस्थ माने जाते हैं, आत्मस्थ माने जाते हैं। तो यही तो करना है, यही तो समझना है। आप माला फेरने के लिए बैठ जाते हैं मंदिर में, और त्याग भी है, चतुर्दशी के दिन आहार नहीं करेंगे, लेकिन आहार मन में बार बार आ रहा है, ये दुर्ध्यान है क्या? ध्यान है वास्तव में। दुर्ध्यान खाओगे? नहीं, वो भी ध्यान है। आहार को त्याग कर आहार का ही ध्यान करो तो भी ध्यान है। इधर ध्यान दे रहे हैं क्या बता रहा हूं? इधर ध्यान दो, क्या बताया? ध्यान करना बहुत आसान है, आप ध्यान के स्वरूप को समझे ही नहीं, इसलिए चिंतित रहते हैं, हमको ध्यान होता ही नहीं। आहार का त्याग कर देता हूँ, बैठता हूँ, फिर भी आहार मन में आता है, उसको दुर्ध्यान समझते हैं। दुर्ध्यान है क्या वो? नहीं, आहार की इच्छा को त्यागना ध्यान है। इच्छा है क्या त्याग करने के उपरांत? इच्छा नहीं है, और इच्छा नहीं होने पर केवल वो मन में आ रहा है तो आपको क्या हानि हो रही है? आने दो ना, आहार का ही चिंतन करो, त्याग भी करो और बैठ करके उसका चिंतन करो।
उपवास करते समय यदि शरीर का साथ नहीं रहा तो क्या तक सिद्ध हो सकता
है? उपवास करते समय
शरीर का साथ अगर नहीं रहा तो तकलीफ होती होगी?
नहीं, शरीर का साथ होता है इसलिए तो उपवास करता है ना। नहीं रहा तो क्या उपवास क्यों करेगा? इच्छा होती है तो इच्छा निरोधो तपः, वो भी तप है, इच्छा का निरोध कर उसकी भी इच्छा रोको, जो उल्टी इच्छा है वो इच्छा भी परिग्रह है, तो उसको भी रोको, जो सही इच्छा है उसको करो। आहार को त्याग करके ध्यान में बैठ गए और आहार का जानबूझकर चिंतन करने लगे, लेकिन आहार की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है, न तो भूख लग रही है न इच्छा हो रही है, आहार का ही चिंतन चल रहा है, इसको क्या कहोगे? ध्यान कहोगे कि दुर्ध्यान कहोगे? कुछ निर्णय करो, क्या कहोगे? दुर्ध्यान जैसे नहीं लगता क्या? उपवास किया है और उसी का चिंतन कर रहे हैं। हाँ, तो ध्यान किसको कहते हैं ये समझो। जिस वस्तु को त्याग किया जाता है उसके ग्रहण के भाव आ गए, तो भूख लगी और ग्रहण के भाव आ गए, चिंतन करते करते भूख लगी और ग्रहण के भाव आ गए, तो दुर्ध्यान है। अगर ये भाव नहीं आए और उस आहार संबंधी केवल चिंतन ही कर रहे हैं, ये जलेबी कैसी है, इसमें शक्कर कितना है, इसमें आटा कितना है और घी कितना है, यही चिंतन कर रहे हैं, तो कर्म बंद होगा क्या? नहीं, यह भी ध्यान की कोटि में ही आता है। इससे कर्म बंध नहीं होता। आप क्या समझते थे, अगर वो मन में भी आया तो ध्यान भंग हो गया, ऐसा समझती थी कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। बंद कब होता है देखो ना, दुर्ध्यान से कर्म का बंद होता है और ध्यान में कर्म बंद रुकता है, रुकता है ना। ध्यान कर्म बंद को रोकने का साधन है और निर्जरा का भी साधन है। रत्तो बंदधि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो एसो जिनोवदेशो तम्मा कम्मेशु मारज्य। कर्म बंद की प्रक्रिया जो है राग के ऊपर डिपेंड है। रागी आत्मा ही कर्म को बांधता है, वीतरागी आत्मा कर्म को बांधता नहीं। रागी यानी क्रोधी नहीं, मराठी शब्द राग ये क्रोध का नाम है। रागी यानी यहाँ पर अनुरागी, आकांक्षी, कामना करने वाला, मोही, लोभी जीव, वांछा करने वाला, अपेक्षा रखने वाला जीव, परिग्रह के प्रति आशा रखने वाला जीव रागी कहलाता है। राग का दूसरा अर्थ है आशा, और मराठी शब्द मराठी अर्थ है क्रोध। ऐसे कैसे कहा है मराठी में कि राग को ही क्रोध कहा राग क्रोध है यहां, और संस्कृत भाषा में, कन्नड़ भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, किसी भाषा में राग को क्रोध नहीं कहा, राग को राग ही कहा, लोभ कहा। केवल एक ही भाषा मराठी भाषा ऐसी है जो राग को क्रोध कहा राग आला यानी क्रोध आला। तो देखो ध्यान करना कितना आसान है। मन को किसी से जबरदस्ती रोकने का नाम ध्यान नहीं है। मन को सरल छोड़ो, सीधा छोड़ो, केवल उसको रागादि भावों से मुक्त रखो। समझ में आ रहा है? इच्छा से मुक्त रखो, ग्रहण करने की बुद्धि से दूर रहो, और मन को जहां भेजना चाहते वहां भेजो। वो जहां स्व इच्छा से जाना चाहता है जाने दो, उसका नाम भी ध्यान ही है। क्या उल्टा लग रहा है ये? सही है कि नहीं? मन जहां जाता है वहां राग द्वेष उसको करने मत दो, बस इतना ही, रोक लगाओ। वो भागता है, भागने दो, भागने का स्वभाव ही है उसका। कब तक रोकोगे, कहाँ रखोगे? अंदर आत्मा में जेल में बंद कर ताला लगाओगे? 48 ताला लगाओ, फिर वो एक मिनट के अंदर भक्तामर पड़ेगा और बाहर आएगा अड़तालीस ताला लगा दो तो भी एक क्षण भर में बाहर आ जाएगा वो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ध्यान आसान है, ध्यान सीधा साधा है। आप ध्यान में बैठो और ये कहो ना कि जो हमारे 10 प्रकार के परिग्रह हैं, इसमें मेरे को रागादि भाव जानबूझकर होता है, मैं इसका मालिक हूं, ये मालकियत मेरा राग भाव है, इच्छा भाव है, मूर्छा भाव है। ये मूर्छा भाव है, मालकियत को मूर्छा भाव कहा, इसलिए मालकियत को छोड़ा जाता है। श्रावक एक उपवास करके आहार संबंधी त्याग करके भी बैठा है तो तत्संबंधी ध्यान उसको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आहार सामग्री का मालकियत अभी है। कल के दिन भोजन करेगा तो कहाँ करेगा? अपने वस्तु का ही भोजन करेगा क्या? दूसरे के यहाँ जा कर के दाता जो दे रहा है वहाँ करेगा? अपने घर में भोजन करेगा कि दूसरे घर में जाएगा? तो अपने वस्तु को रख रखा है, चतुर्दशी को नहीं खाऊंगा ये कह रहा है। तो ये जो तप है श्रावक का, ये अभ्यास रूप होता है। ये तप भी चतुर्दशी का उपवास भी अभ्यास रूप है, वो ध्यान की सिद्धि का साधन नहीं बन सकता, ध्यान की सिद्धि का अभ्यास है। और मुनि महाराज अगर उपवास कर ले तो उस तप से उस दिन उनको ध्यान की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि आहार सामग्री का स्वामित्व उनके पास नहीं, और आहार सामग्री का स्वामित्व नहीं, उनके पास कोई ऐसा परिग्रह नहीं है आहार संबंधी, इसलिए वो इंद्रिय विजय भी कहलाते हैं, इंद्रिय विजय उनके पास है। 10 प्रकार के इन परिग्रहों के प्रति मूर्छा भाव है, स्वामित्व भाव है, तो इंद्रिय विजय नहीं है। इंद्रिय विजय किसका नाम? वस्तु के स्वामित्व भाव को त्यागने का नाम इंद्रिय विजय है, स्वामित्व त्यागना। और स्वामित्व त्यागने के बाद फिर इच्छा को भी त्यागना। स्वामित्व तो छोड़ दिया, चलो ये तुमको दे देता हूँ, देने के बाद भी उसमें फिर इच्छा करने लग जाए तो इंद्रिय विजय नहीं होगा। इच्छा को भी छोड़ना और वस्तु को भी छोड़ना, त्यागना, दोनों को त्यागना, इच्छा को भी त्यागना और वस्तु को भी त्यागना, इस प्रकार करने से, और 10 प्रकार के वस्तु को, 10 प्रकार की, तो इंद्रिय विजय होगा। श्रावक अवस्था में चाहे प्रतिमाधारी बने, चाहे छुल्लक बने, चाहे आरिका बने, चाहे कोई भी अवस्था को धारण करें, परिग्रह तो है ना, एकाद तो परिग्रह है, वस्त्र परिग्रह है, तो वस्त्र का स्वामित्व तो रहता ही है। हम सैकड़ों हजारों वस्त्र के स्वामित्व को धारण नहीं करते, उसके मालिकियत हमारे पास नहीं है, उसके मालिक हम नहीं हैं, पर एक वस्त्र को तो बचाया है ना, तो उसके प्रति स्वामित्व भाव है, तो वह वस्त्र संयम का साधन है या कर्मबंध का साधन है? कर्मबंध का साधन है। जो जो कर्मबंध का साधन है उसको त्यागना ही पड़ता है। ऐसा है, जो जो कर्मबंध का साधन है जिसको रखने से स्वामित्व आ जाता है, स्वामित्व वाले वस्तु को रखने से इंद्रिय विजयी नहीं हो पाएंगे, ये गणित है। असल में ये गणित है, ध्यान क्यों नहीं होता इसका उपाय। टाइम हो गया, जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।